4%. बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सदा सहज सिद्धि स्वरूप बन जाए। आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती है, तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती है। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते हैं तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता, तो दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर समय कार्य में लगाओ। तो बाबा त्रिकालदर्शी स्थिति के बारे में कह रहे हैं और बाप दादा से वरदान कौन सा मिला है, दिव्य बुद्धि का। तो बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सहज सदा सहज सिद्धि स्वरूप बन जाए। आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती है। हमारे जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती है, तो चेतन में सिद्धि स्वरूप बने तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती है। तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं जो, तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं जैसे, व्यर्थ ऐसा समाप्त हो जाता है जैसे कि कभी था ही नहीं, जैसे स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। प्रकाश जब आ जाए तो अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश और अंधकार के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, सत्य और असत्य के बीच कोई लड़ाई नहीं है। जब सत्य आ जाए तो असत्य स्वतः ही विलीन हो जाएगा। आध्यात्मिक वृत्तियां और संसार की वृत्तियों के बीच में लड़ाई नहीं है, क्योंकि जब आध्यात्मिक वृत्तियां जागृत हो जाए तो सांसारिक वृत्तियां स्वतः ही विलीन हो जाएगी। धर्म और अधर्म की लड़ाई नहीं है, क्योंकि धर्म अगर वास्तविक रूप में जागृत हो जाए तो वहां अधर्म है ही नहीं, अगर है तो शायद वो झूठा धर्म है, झूठा है वो। कई लोग कहते हैं हमको जब ज्ञान में आए तब बहुत अनुभव होते थे, अभी नहीं हो रहे, शायद वो भी अनुभव नहीं थे। ज्ञान में आने के बाद यही ज्ञान, ज्ञान के बचपन में, बचपन के दिनों में आत्मा के बहुत अच्छे अनुभव होते थे, परमात्मा के अनुभव होते थे, अभी नहीं हो रहे, शायद वो थे ही नहीं। उस अनुभव पर भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अनुभव अनुभव जो होते हैं उसमें लड़ाई नहीं होती है। जो वास्तविक अनुभव है, जो सत्य अनुभव है, वो हमेशा ही रहते हैं। उस अनुभव की वो गहराई नहीं थी, पर शायद हमने तुरंत मान लिया था कि यही सर्वश्रेष्ठ अनुभव है। तो समर्थ स्थिति में जैसे आत्मस्थित होती है तो व्यर्थ वहां समाप्त हो जाता है। समर्थ जहां है वहां व्यर्थ है ही नहीं, सत्य असत्य धर्म अधर्म संसार भगवान और माया, जहां भगवान है वहां माया नहीं है। तो ये जो है इसके लिए ध्यान किसकी तरफ देना है, समर्थ की तरफ, सत्य की तरफ। जहां प्रेम है वहां घृणा हो ही नहीं सकती, प्रेम और घृणा के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। अगर कोई कहता है हमारे पास प्रेम बहुत है पर बीच बीच में घृणा उत्पन्न होती है तो वो प्रेम वहां पूर्ण है ही नहीं, क्योंकि प्रेम का अभाव ही वहां घृणा है। फिर एक तो यह वो है या ये है, ये संपूर्ण रूप से अगर विद्यमान है प्रेम तो वहां घृणा आ ही नहीं सकती किसी के प्रति। तो बाबा कहते हैं अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते हैं तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता। व्यर्थ आ क्यों रहा है? क्योंकि समर्थ का अभाव है। तो दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर कार्य, हर समय कार्य में लगाओ। वरदान तो मिला है, पर वरदान को यूज करना है, कार्य में लगाना है। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि क्या इशारा दिया, ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो। अब क्या करो, ज्ञान और योग को, शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्मा बनो। प्रयोग करना अर्थात दो अर्थ है उसके, एक्सपेरिमेंट करना या उपयोग करना, यूटिलाइज करना। यूटिलाइजेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, ऐसे दो अर्थ है। जैसे योग का प्रयोग, योग का प्रयोग या तो एक योग का एक्सपेरिमेंट करना या फिर योग को उपयोग करना उसका, इस तरह से दो। उसी तरह ज्ञान का, उसी तरह शक्ति का। तो कौन बनो? प्रयोगशाली आत्मा बनो। उदाहरण दिया किसका? साइंस का। साइंस क्या करता है? एक्सपेरिमेंट करता है हर चीज का। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना, लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? साइंस की शक्ति का। अच्छा बाबा, यहाँ दूसरे अर्थ से कह रहे हैं, आज जो भी साइंस ने प्रयोग के साधन दिए हैं, उन सब साधनों का आधार क्या है? साइंस के प्रयोग का आधार क्या है? मेजोरिटी दिखेंगे लाइट है। सारे प्रयोग लाइट पर करते हैं, लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किस आधार से चलता है? कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार लाइट है। तो आपके साइलेंस की शक्ति का आधार भी क्या है? लाइट है। साइंस सारे प्रयोग लाइट के ऊपर करता है, तो हम साइलेंस वाले सारे प्रयोग लाइट के ऊपर करेंगे। उनकी लाइट कौन सी और हमारी लाइट कौन सी? साइंस और अध्यात्म दोनों, साइंस स्थूल चीजों में छिपी हुई ऊर्जा को खोजता है, जो स्थूल वस्तु है मास, ये इसमें कुछ ऊर्जा है उसको खोजता है। अध्यात्म चेतना में छिपी हुई ऊर्जा को खोजता है। दोनों का भेद है, धर्म का या अध्यात्म और विज्ञान। विज्ञान वस्तुओं की ऊर्जाओं को खोजता है, छिपी हुई हिडन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और अध्यात्म चेतना में जो छिपी हुई ऊर्जा है उसको खोजता है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि साइंस किसका आधार लेता है? लाइट का। तो साइलेंस वाले किसका आधार लेंगे? लाइट का। अब कौन सी लाइट? कौन सी? स्थिति की लाइट। जब वह प्रकृति की लाइट द्वारा, वो साइंस प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, स्थूल लाइट से अनेक प्रयोग करते हैं साइंटिस्ट, तो आपकी अविनाशी, हमारे पास कौन सी है? परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट। तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता है? अगर वो इतना प्रयोग करके क्या कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या नहीं कर सकते? हमारे पास कौन सी लाइट है? अविनाशी है हमारी, परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और स्थिति लाइट, ये हमारी लाइट है। वो प्रयोग कर सकते तो हम क्या नहीं कर सकते? आपके पास स्थिति भी लाइट है और मूल स्वरूप भी लाइट है, डबल लाइट। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। साइंस के पास लाइट, वो उसका मूल आधार, हमारा मूल आधार भी लाइट। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे ना कि लाइट है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी करंट। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति व लाइट स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। कितना कठिन उदाहरण है ये बाबा जो दे रहे हैं, विज्ञान से तुलना कर रहे, स्थूल की तुलना अध्यात्म के सूक्ष्म सिद्धांतों को समझाने के लिए उस वैज्ञानिकों का उदाहरण दे रहे। हम भी तो वैज्ञानिक है, रूहानी वैज्ञानिक है, वी आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। वो जो साइंटिस्ट है वो दिन रात लगे हुए रहते हैं, और हम लोग हैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, आध्यात्मिक वैज्ञानिक है। वो ऊर्जा को खोज रहे हैं स्थूल स्थूल से, हम सूक्ष्म से, चेतना से। चेतना में अनंत ऊर्जा समाई हुई है, उस ऊर्जा की खोज, उस ऊर्जा के खोजी, उस ऊर्जा के अन्वेषण अन्वेषक हम हैं। तो हमारे पास कौन सी लाइट रहनी चाहिए? आत्मिक लाइट, परमात्मा लाइट, स्थिति की लाइट। अगर यह है तो प्रयोग की सफलता सहज हो सकती है। अपने जीवन को क्या बना दो? एक लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। महात्मा गांधी की किताब का नाम क्या है, याद है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ प्रयोग। अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बनाया कि जिसमें प्रयोग किए, ये परिस्थिति में सत्य डालो, क्या होता है देखो, इस केमिकल में वो केमिकल डालो, व्हाट इज द रिजल्ट, इसको ढूंढना। ये कर्म है, ये कर्म किया, अब ये कर्म में योग डालो थोड़ा सा, योग और कर्म, क्या नया सब्सटेंस फॉर्म होता है देखो, क्या रिएक्शन हो रही है। संकल्प किया, क्या रिएक्शन हुई, क्या परिणाम आया उसका। संकल्प किया, हर संकल्प जो मन में उठता है वो निकलता है, प्रकृति में जाता है, प्रकृति और संकल्प की रिएक्शन होती है, और क्या निर्माण होता है, घटनाओं का निर्माण होता है। हम संकल्प करते हैं, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे से ये नहीं होगा। ये संकल्प निकला, प्रकृति में गया, प्रकृति में वैसे ही बहुत सारे संकल्प है कमजोरी वाले, वो कमजोर संकल्प बराबर उस कमजोर संकल्प को चुनता है। हजारों संकल्पों में से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, आकर्षण का नियम कहता है कि एक कमजोर संकल्प अनेक कमजोर संकल्पों को आकर्षित करता है। दो कमजोर संकल्पों की रिएक्शन हो रही है, उस आधार से परिस्थितियां निर्माण हो रही है, ऐसी घटनाएं निर्माण होगी कि हम और ही कमजोर होंगे। जो कहता है मेरे पास बिल्कुल धन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। हमारे पास एक पेशेंट आता था, वो कहता था कि बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, पैसे ही नहीं है। अभी बच्ची एडमिट है, वो डिस्चार्ज हुई कि बेटा एडमिट हुआ, फिर वो डिस्चार्ज हुआ कि उसकी माँ एडमिट हुई, और वो कहता था बीमारी है सब, हमेशा यही रोना रहता था। तो जितना वो रोता था उतने और भर्ती होते थे, उतने और एडमिट होते थे, उतने और कमजोर होता था। जो जो संकल्प किया जाता है वैसी ही घटनाएं निर्माण होती। और अगर कोई ऐसा है कि जिसके पास कुछ नहीं है पर वो कहे कि मेरे पास सब कुछ है, तो परिस्थितियां ऐसी निर्माण होगी कि सब कुछ मिल जाएगा। जैसा सोचोगे और वैसे ही हम बनेंगे। ये साइंस अध्यात्म एक होता है यहाँ पर, इन नियमों पर। तो प्रयोग करना है हर चीज का, ज्ञान का प्रयोग, गुणों का प्रयोग, शक्तियों का प्रयोग, जीवन में योग का प्रयोग। जो कर्म ऐसे ही कर रहे हैं उसमें याद मिक्स करके देखो क्या होता है। जो दिनचर्या इस तरह से गुजार रहे हैं उसमें और कुछ डाल के देखो, अगर ये कर दिया तो क्या होता है। हर दिन देखना है एक एक संकल्प का क्या क्या प्रयोग, क्या क्या परिणाम है। संकल्प रचा, अब देखो क्या परिणाम होता है। पॉजिटिव रचा, अब देखो क्या परिणाम। निगेटिव अगर रच रहे तो उसमें भी देखो क्या होगा। किसी ने हमको बहुत दुख दिया, हमने उसके प्रति वैसे ही बदला, घृणा के संकल्प रचे, अब क्या परिणाम होता है वो देखो। किसी ने हमको बहुत बहुत अपमान किया, अब प्रेम के संकल्प रचे, क्या प्रभाव होता है। हर चीज का प्रभाव कुछ ना कुछ है, एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं है। जो संकल्प मन में उठ रहा है कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़कर जा रहा है, वाइब्रेशंस छोड़ के हम जाते ही है। वो जो चोर होता है वो भी अपने वाइब्रेशन छोड़ जाता है। पुलिस वालों के पास कुत्ता होता है एक, अगर कहीं चोरी हो गई तो, हाँ स्नीफ करता है वो, अगर कहीं चोरी हो गई तो कुत्ता जाता है, पुलिस लेकर आते हैं, और वो कुत्ता ढूंढते ढूंढते वो वाइब्रेशंस वहां ये करता है उस चोर के और उसको ढूंढता है वहां पे, बराबर पकड़ के लेके आता है। तो वो चोर, साधारण चोर, अपने वाइब्रेशन छोड़कर जाता है। जो संसार की महान आत्माएं हैं उनके महान संकल्प क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे फिर? सेम थियोरी साइंस की और अध्यात्म की सेम है। वहां एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, परिणाम निकलता है। यहां पर भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो परिणाम निकलेगा, परंतु वहां वो उस वैज्ञानिक की क्या स्थिति होती है? पूरा एकाग्र बुद्धि होती है उसकी, अपने प्रयोग में इतना लग जाता है कि उसे पता ही नहीं रहता है दिन है या रात हो रही है। एक कमरे में बस वही उसका जीवन है, वही उसका संसार है, वही उसका सब कुछ है। स्वप्न में सब दिन रात, एब्सेंट माइंडेड कहा जाता है उन्हें। एब्सेंट माइंडेड साइंटिस्ट, उन्हें दूसरा कुछ सूझता ही नहीं कुछ भी। इतना कंप्लीट ऑक्यूपेशन, कंप्लीट ऑक्यूपाइड रहता है उनका माइंड, कंप्लीट कैप्चर ऑफ द माइंड बाय वन आइडिया। एक आइडिया ऐसी समा जाती है कि वो दिन रात बस उसी के बारे में सोचता रहता है, ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, ये कैसे, अभी कैसे होगा, अभी कैसे होगा। वो होता नहीं है सफल, फिर भी सोचते ही रहता है दिन रात, दिन रात। हाँ, कभी नहीं आते, उनको तो चुनौती लगती है। जब तक वो प्रयोग करते ही रहता है, करते ही रहता है, भले उस समय का जितने आज तक विज्ञानिक वैज्ञानिक हुए हैं, जिस जिस समाज में वो आए हैं, उस कालखंड से उनकी सोच कहीं आगे थी। सारे लोगों ने उनका विरोध किया, ऐसे कई मेडिकल में तो ऐसे कई लोग हैं कि उनको मार दिया गया और उनके 100 साल के बाद पता चला कि उसने जो प्रयोग किया था वो राइट था। किसी कोई और दूसरा वैज्ञानिक आ गया और उसने उसको वापस किया। ऐसे कई सारे हैं, कईयों ने अपने शरीर पर प्रयोग किया, कितने इंजेक्शन ऐसे निकले कि वो अभी कौन तैयार नहीं होता है दूसरे लोग। तो कई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने ही शरीर पर वो ड्रग्स का प्रयोग किया और मर गए, और फिर किसी और ने देखा कि ये बहुत काम का है, इससे ये होता है, उससे वो होता है, इससे ये बीमारी ठीक हो सकती है। एक एक बीमारी का एक एक ड्रग और एक एक इंजेक्शन जो निकले है, वो कितना मेहनत है उसके पीछे, मेडिकल साइंस की त्याग है बहुत बड़ा बड़ा हर एक का। तो बिना, तो हम अगर प्रयोग कर रहे हैं, हमारा जीवन ही यदि प्रयोगशाला है, तो हमें भी, कल बोला ना बेहद का त्याग, वैसा ही त्याग चाहिए। उतनी ही एकाग्रता चाहिए, उतनी ही लगन चाहिए, और कितनी भी असफलता मिले वो लोग नहीं रुके तो हम भी नहीं रुकेंगे। पर हाँ, वो दुखी हो जाती है ना, उसमें गमगीन, मतलब एकदम चोट पहुंचती है अंतरात्मा को असफलता से, और आत्मा को रोकती है वो। इसके लिए बहुत ज्यादा धैर्य की आवश्यकता है, बहुत धैर्य। एक बताते थॉमस कार्ली करके एक ऑथर था, उसने किताब लिखी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इतनी मोटी किताब लिखी, और लिखी किस पर, इतिहास पर किताब, तो उसमें कितने फिगर्स, फैक्ट्स, क्या क्या कुछ नहीं होगा। फ्रांस की जो क्रांति हुई 1700 में, उसके ऊपर किताब लिखी इतनी बड़ी। अभी किताब पब्लिश नहीं हुई है, खाली उसके मैन्युस्क्रिप्ट है, पेपर्स है। उसने अपने मित्र को पढ़ने के लिए दिया, मित्र लेके गया अपने घर पे और पढ़ा थोड़ा सा, ऐसे ही रख दिया और चला गया। वहां पर ही वो क्या कहते हैं उसको, आग का, विदेशों में रहता है ना फर्नेस, कमरे को लाइट करने के लिए, हीट रखने के लिए, वो उसकी नौकरानी आई, उसको लगा ऐसे ही कागज पड़े हुए इधर उधर बिखरे, उठा के सारे डाल दिए, सब जल गया। तो उसने जब उसको बताया थॉमस कार्ली को कि वो तो सब जल गया, उसने उसको एक शब्द भी नहीं कहा, फिर सारा बैठकर फिर से लिखा। और अभी जो अवेलेबल फ्रेंच रिवॉल्यूशन किताब है मार्केट में, दैट इज अ वर्ल्ड फेमस बुक, वो दूसरी बार लिखी हुई है। कितना धैर्य है, क्योंकि उसको पता है मैं इसको चिल्लाऊ मारू पीटू वो किताब वापस आने वाली है। कुछ नहीं कर सकते, कितना भी करो अपनी स्थिति खराब होगी, क्रोधित हो जाए, कुछ भी हो जाए। किताब इतनी बड़ी लिखना, उसमें कितना रेफरेंसेस की जरूरत होती है, ये इस साल में ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। वो इतिहास की किताब है, कोई नॉवेल नहीं है, इतिहास की किताब है वो। हाँ, अच्छा पूरा याद करके वापस लिखना, ये याद करने की बात भी नहीं है, यहाँ धैर्य की बात है, धैर्य की परीक्षा है ये, पेशेंस। तो जो भी महान आत्मा है संसार में, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे दार्शनिक हो, उनमें इस तरह के एक अद्भुत से गुण होते हैं, जिसके लिए असफलता आने पर भी वो कभी हारते नहीं, उनका धैर्य कभी परास्त नहीं होता है परिस्थितियों से। तो यहाँ हमको जीवन को प्रयोगशाला बनाना है, और प्रयोग किसका करना है, परमात्मा शक्ति का, परमात्मा आत्मिक शक्ति का और लाइट का। और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने पर प्रयोग करके देखो, पहला प्रयोग स्वयं पर, फिर दूसरे पर प्रयोग। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण या विशेष या कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्व प्रति प्रयोग करके देखो। पहला एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही है, हम सन्यासी नहीं है, सन्यासी को बहुत कम पेपर आते हैं। सब छोड़ के चले जाओ वन में, कुटिया में बैठो, क्रोध का तो संबंध ही नहीं है किसी से, किससे क्रोध करेंगे, कोई परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं हो रही है तो कहां से क्रोध करेंगे। एक सन्यासी था जिसने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, 15-20 साल तपस्या की, और कभी क्रोध आया ही नहीं 20 साल तक। उसको लगा क्रोध पे तो मैंने एकदम विजय प्राप्त कर ली है, अभी क्रोध का तो मेरे अंदर नाम निशान ही नहीं है, तो कहा चलो अभी संसार में चलते हैं। संसार में सन्यासी का काम है भिक्षा मांगने, भिक्षा मांगने गया तो वहां पे एक छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा है, छोटा सा बच्चा इतना जोर से रो रहा है कि पहले तो उसने कहा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, और रोना बंद ही नहीं करता है, तो बस क्रोध आ गया। तो कहां गई तपस्या 20 साल की, क्योंकि वो जो 20 साल तपस्या कर रहा था एकांत में बैठ के कर रहा था, जनसंपर्क नहीं था वहां। सारी माया जो आती है कहां आती है, संबंध संपर्क में, वहां ही सब पता चलता है कितना क्या अंदर चालू है। चुपचाप बैठ जाओ मौन में अपने कमरे में, 3 दिन का मौन भट्टी, ठीक है, कोई माया नहीं है। माया कब आती है, जब वो टूट के बाहर निकलते हो तब। तो क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही है, तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो। कोई भी पेपर आया लेकिन जो शक्ति व जो गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा, उसमें कहां तक सफलता मिली। प्रयोग कहां करना है, जीवन के लेबोरेटरी में, जीवन की प्रयोगशाला में। इस अनुपात में हमारा कार्य और भी कठिन है। वो जो वैज्ञानिक है वो वहां कोई आता नहीं है उसके पास, वो चुपचाप करते रहता है। हमारा जो प्रयोग है वो जीवन की प्रयोगशाला में, उसका स्थूल से ऊर्जा निकालना है, हमारा सूक्ष्म से ऊर्जा को निकालना है, उसका केमिकल से हमारे गुण ज्ञान शक्ति है उसमें प्रयोग करने। और कितने समय में सफलता मिली, जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है, तो समय भी कम करते जाते हैं, थोड़े समय में सफलता ज्यादा, यह साइंस वालों का भी लक्ष्य है, कम से कम समय में सफलता। ऐसे जो भी लक्ष्य रखा उसमें समय को भी चेक करो और सफलता को भी चेक करो, कितने टाइम में कितनी सफलता मिली। ऐसा नहीं कि बस कर ही रहे प्रयोग 15 साल से पिछले, सहनशीलता की शक्ति है उस पर प्रयोग चालू है, टाइम और किस परसेंटेज कितनी है। जब स्व के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर स्वयं पर एक्सपेरिमेंट किया कि ये ठीक है, अभी दूसरों आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा। और जब स्व के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। हमने देखा कि ये ऐसे प्रयोग किए तो तुरंत अनुभव होता है, लंबा समय किया हमने और बार बार अनुभव हुए, तो हम फिर दूसरों को बता सकते कि ऐसा करो। हमने अनुभव ही नहीं किया और दूसरों को बताए तो क्या होगा। अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ते रहेगा उन आत्माओं पर। जैसे एक दृष्टांत सामने रखो, उदाहरण दिया मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है, उदाहरण सहन शक्ति। कभी प्रयोग करेंगे कमरे में बैठे जहाँ कोई नहीं आता है, और फिर हमने 10 दिन में सोच लिया मेरी सहन शक्ति तो बहुत बढ़ गई है, क्या ये सहन शक्ति का प्रयोग है? कहाँ करना है? संबंध संपर्क में, जीवन की प्रयोगशाला में। कल का वरदान था ना, निंदा करे, टक्कर, ये सब चीजें जो होगी उसमें प्रयोग करना है, उसमें नम्रता का कवच। हाँ, आदत पड़ गई तो सहज संभव हो जाता है, वही तो कह रहे ना, पहले सौ के ऊपर प्रयोग करो, फिर आदत पड़ गई, फिर सहज लगा, फिर कहीं हम दूसरों को कह सकते हैं ऐसे करो। यहाँ दृष्टांत बाबा दे रहे उदाहरण, मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है। कहाँ करेंगे सहन शक्ति का प्रयोग? उन लोगों के बीच जिन्हें निंदा में बहुत मजा आता है। निंदा सुख, हिंदी में शब्द एक, निंदा करने में जो सुख प्राप्त होता है उसे निंदा सुख कहा जाता है, उन्हीं के बीच में हम प्रयोग कर सकते हैं।
निंदा सुख,
निंदा सुख।
अच्छा
है, तो जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो जो दूसरी आत्माएं आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त है वे भी बच जाएंगे ना, उनका भी तो किनारा हो जाएगा। और जैसे छोटे छोटे संगठन में रहते हो, सेंटर्स है, तो सेंटर्स पर छोटे संगठन है ना, तो पहले स्व के प्रति ट्रायल करो, फिर अपने छोटे संगठन में ट्रायल करो, पहले स्व के प्रति, फिर छोटे संगठन में, और फिर बड़े संगठन में। संगठन रूप में कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। कौन सा प्रोग्राम बनाओ? शक्ति, गुण, ज्ञान, जो भी है इन पर प्रयोग करो, इनसे प्रयोग करो। उससे क्या होगा, संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशन फैलेगा, और वायुमंडल व वाइब्रेशंस का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता ही है। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बन, ज्ञानी, योगी, ध्यानी और अभी प्रयोगी। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे प्रयोगी। प्रयोगी की स्थिति ऊंची अवस्था है सबसे। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। दूसरा उदाहरण ये संतुष्टता का, कोई भी गुण ले लो, चाहे जैसे अनुशासन ले लिया, अब अनुशासन का स्वयं के जीवन में प्रयोग, दिव्यता, पवित्रता का प्रयोग, स्वयं ब्रह्मचर्य का प्रयोग स्वयं के जीवन में। ब्रह्मचर्य अगर धारण कर लिया जाए तो क्या क्या फायदे है? 10 दिन अगर धारण कर लिया किसने, 10, 11वें दिन शक्ति बढ़ जाएगी, सहनशीलता, पवित्रता, संतुष्टता, कोई भी एक गुण ले लो, 36 गुणों में से एक गुण लिया और उस पर प्रयोग किया, ये हो गया गुण। शक्तियां 8, उनमें से कोई भी शक्ति ली और उसका प्रयोग, सहयोग, स्वयं को समेट लेना, कोई भी एक शक्ति, और या ज्ञान की कोई भी एक पॉइंट लिया और उसका प्रयोग, तो फिर औरों में सहज हो जाएगा, क्योंकि विधि आ जाएगी। जैसे साइंस से कोई भी साधन को पहले पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते, देखो कितने उदाहरण दे रहे हैं बाबा साइंस के, ये फिर वापस दूसरा उदाहरण है साइंस, तीसरा चौथा, क्या करते हैं, पहले साइंस सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं, पहले छोटा और फिर बड़े ट्रायल्स होते हैं। मेडिसिन में भी ऐसे, पहले एक दवाई निकलती है उसको एक पेशेंट को दिया जाता है, अगर उसको ठीक लगा तो 10 पेशेंट्स को खिलाएंगे, फिर बड़ा ट्रायल करते, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, 500 पेशेंट ये, 500 पेशेंट ये, 500 को देना है, 500 को वो गोली नहीं देना है, 6 महीने तक देखो, 1 साल तक देखो, 1 साल के बाद रिजल्ट देखो, जिनको दिया था उससे क्या हुआ, जिनको नहीं दिया था उनको कितना फायदा हुआ। कुछ कुछ ट्रायल्स ऐसे हुए मेडिसिन में कि एक दवाई निकली है, एक दवाई दो ग्रुप्स बनाए, इनको दी इनको नहीं दी, परंतु वो करते करते 10 साल का अगर वो प्रयोग है, 5 साल का प्रयोग था, परंतु वो करते करते ही पता चला कि फायदे इतने ज्यादा है कि क्यों वंचित रखे उनको, दूसरे ग्रुप को, तो एक्सपेरिमेंट को ही कैंसिल कर दिया गया और सबको दे दी गई दवाई, क्योंकि फायदे इतने ज्यादा है उसके। नहीं तो, और वो भी ब्लाइंड ट्रायल्स रहता है, जो खा रहे उनको भी नहीं पता रहता है, इधर ब्लाइंड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। तो इस तरह का, तो पहले छोटे स्मॉल स्केल और फिर बड़े स्केल में, पहले अपने आप स्वयं को सैंपल के रीति से यूज करो, और ये प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी। फिर एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट को कोई बोलता नहीं है, तो तुम अभी ये करो वो करो, उसके मन में चलता ही रहता है ये हुआ अभी मैं वो करूंगा, अभी वो हुआ अभी मैं और कुछ करूंगा, नया नया सोचते ही रहता है वो। और बुद्धि मन इसमें बिजी रहेगी तो क्या हो जाएगा, तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, उसने क्या किया इसने क्या किया, कलता ना विकर्माजीत अर्थात ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये नहीं आएगा। दूसरों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करेगी आत्मा। फिर छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो शक्तियां लगाते हो उसकी बचत हो जाएगी, सहज ही अंतर्मुक्ता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी। क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की सफलता क्या करती है, कोई भी चीज का प्रयोग और फिर उस प्रयोग की सफलता, एक्सपेरिमेंट की सफलता स्वतः ही और सब तरफ से किनारा कर देती है। बिजी हो जाएंगे ना हम, ये प्रयोग तो सभी कर सकते हो ना कि मुश्किल है। इस वर्ष प्रयोगशाली आत्मा बनो, समझा क्या करना है। और हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा। फिर वह संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशन बहुत कार्य करके दिखाएगी। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए, मुझे ही करना है, मुझे करना ही है, दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट होता है क्या, दूसरा देख रहा है कि दूसरा साइंटिस्ट सो रहा है तो उसको तो और ही उमंग आता है कि और करूं, पहले मैं उस सत्य तक खोजूं, पहुंच जाओ उसको सोने दो। दुश्मनी में शत्रु को जगाया नहीं जाता है, अचेत किया जाता है, सचेत नहीं ऐसा कहते हैं कि वो सो रहा है उसको सोने दो ताकि हम प्रैक्टिस करें। सचेत नहीं, अचेत किया जाता है दुश्मनी में। तो आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है। फिर वही दो बातें, पेयर ऑफ अपोजिट्स, दृढ़ता जहां है वहां अलबेलेपन आ ही नहीं सकता है, वो प्रकाश और अंधकार की बात है। बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। तो क्या बनेंगे, प्रयोगशाली बनेंगे, त्रिकालदर्शी आसनधारी। और तीसरी क्या बात, जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। तो वर्ष का ये होमवर्क है, ये होमवर्क स्वतः ही बाप के समीप लाएगा। कौन सा होमवर्क, प्रयोगशाली आत्मा बनना है। जैसे ब्रह्मा को देखो, कोई भी कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को सोच समझ कर कर्म किया और कराया, अलबेलापन नहीं कि जैसे हुआ ठीक है चलो चलना ही है, नहीं। फॉलो ब्रह्मा बाप, फॉलो करना तो सहज है ना, कॉपी करना है ना, कॉपी करने की तो अकल है ना। अच्छा, ओम शांति।